हमारे मध्य गीता बहन जी आए हैं स्वयं की पहचान इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु। आप सभी महान आत्माओं से नम्र निवेदन है, एक हाथ के ताली से आप गीता बहन जी का भी स्वागत करेंगे। वैसे तो जिंदगी में हम बहुत कुछ कर रहे हैं, सारे रोल्स निभा रहे हैं। जब हम रात को सोकर सुबह उठते हैं, जब हम अपना चेहरा आईने में देखते हैं, जो रूप आईने में नजर आता है, क्या मेरा असली स्वरूप यही है? इस विषय पर सोचने में लग जाते हैं तो अनुभव में आता है कि ये मेरा असली रूप नहीं है, क्योंकि जब मैं शरीर छोड़ देती हूँ, मेरे अपने ही लोग इसे ले जाकर जला देंगे। मेरे कोई भी कर्म इंद्रियों से मैं कर्म नहीं कर सकता, तो क्या है मेरा असली स्वरूप? कौन हूँ मैं? कहाँ से आई हूँ? कहाँ जाना है? क्या है मेरा असली परिचय? जो स्वयं खुदा ने स्वयं की नई पहचान दी, उस नई पहचान को करवाने हेतु हमारे मध्य आदरणीय गीता दीदी पधारे हैं। अपने 40 वर्षों के विशाल अनुभव के आधार पर ज्ञान मार्ग के इस पथ पर आपका पहला कदम रखवाएंगे, स्वयं की पहचान इस विषय पर आपको सुनाएंगे। कहा जाता है, क्यों वक्त गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में, क्यों वक्त गुजारते हो देखते हुए खुद को आईने में, कुछ वक्त प्रभु के सामने बैठो, कुछ वक्त प्रभु के सामने बैठो, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में, खूबसूरत हो जाओगे सही मायने में। अभी मैं आदरणीय गीता दीदी से अनुरोध करती हूँ स्वयं की नई पहचान इस विषय पर प्रकाश डाले। आदरणीय गीता बहन जी।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग राजयोग के प्रथम सत्र में हम फिर से मिल रहे हैं स्वयं की सही पहचान। हर व्यक्ति को ये जानने की जिज्ञासा रहती है कि आखिर हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं और अंत में हमें कहाँ जाना है। हर धर्म में भी इस बात का महत्व बताया गया है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। कविवर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भी काव्य में लिखा है कि अंतर मम विकसित करो, निर्मल करो, उज्ज्वल करो। वो हमारा आंतरिक स्वरूप कौन सा है? योग के प्रथम अभ्यास का संबंध स्वयं के सही परिचय से है। योग शब्द का अर्थ ही है मिलन, वियोग माना अलग हो जाना, जुदा हो जाना, सेपरेशन। योग मीन्स मिलन मनाना, संबंध जोड़ना, इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन। इस योग को सीखने के लिए मूल तीन बातों को प्रथम जानने की जरूरत है और आज के दिन ये तीनों मुख्य विषयों पर आप समझेंगे। पहला है हम स्वयं कौन है, योग अभ्यास करने वाले, योग साधना करने वाले हम साधक हैं, हमारा सही परिचय क्या है। दूसरा है साध्य, हमें योग किससे लगाना है, मन बुद्धि कहाँ जोड़ने हैं, वो परम शक्ति परमात्मा कौन है। और तीसरा है साधना, किस विधि से, किस रीति से, पद्धति से योग का अभ्यास करना है। आज के प्रथम सत्र में जीवन का प्रथम पाठ हम यथार्थ रूप से जानेंगे। हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं। आप कौन है, इस प्रश्न के उत्तर में हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय ही एक दो को बताते हैं। जो परिचय हमने इस दुनिया में आकर प्राप्त किया है, जिस परिचय को हम इस दुनिया में ही छोड़ करके जाते हैं, वो हमारा दैहिक दुनियावी परिचय ही बुद्धि में रहता है कि मैं फलाना व्यक्ति हूँ, मैं फलाने का संबंधी हूँ, मैं व्यापारी हूँ, ऑफिसर हूँ, शिक्षक हूँ, हम ब्राह्मण है, बनिया है, हिंदू है, मुस्लिम है, पंजाबी है, बंगाली है, तमिल है। जो हमारा ये दुनियावी परिचय है उसे ही हम अपना परिचय समझकर बताते हैं। इवन आप अपनी सूक्ष्म स्मृति में भी देखें तो सूक्ष्म स्मृति में भी क्या रहता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं युवा हूं, बूढ़ा हूं, काला हूं, गोरा हूं। स्पष्ट है हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं। जो भी कर्म हम करते हैं, सुबह उठते हैं तब से लेकर रात को सो जाते हैं तब तक आप अपने आप को चेक करिए। कुछ ही कर्म में शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस हमें रहती है कि मैं मिस्टर फलाना, पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं सुंदर हूं, काला हूं, गोरा हूं, युवा हूं। शरीर के नाम रूप रंग आयु का अभिमान बुद्धि में रहता है। कुछ ही कर्म व्यवहार में आप देखिए संबंधों के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। मैं इनका पति हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं, संबंध के अभिमान में आकर व्यवहार करते हैं। इस प्रकार हमें अपने प्रोफेशन की कॉन्शियसनेस रहती है। जो व्यवसाय व्यापार हम करते हैं उसके अभिमान में रहते हैं कि मैं ऑफिसर हूं, मिनिस्टर हूं, उद्योगपति हूं, डॉक्टर हूं, एडवोकेट हूं, प्रोफेशन का अभिमान रहता है। और ये अभिमान इतना रहता है कि रिटायर्ड हो जाने के बाद भी व्यक्ति अपने आप के लिए कहता है कि मैं एक्स एमएलए हूं, मैं एक्स गवर्नमेंट ऑफिसर हूं, मैं एक्स मिनिस्टर हूं। इस प्रकार जाति का अभिमान, हम ब्राह्मण है, बनिया है, राजपूत है, जाति की कॉन्शियसनेस, धर्म का अभिमान, हम हिंदू है, हम मुस्लिम है, हम क्रिश्चियन है, सिख है, भाषा का अभिमान, हम गुजराती हैं, मराठी हैं, तमिल हैं, तेलुगु हैं, भाषा का अभिमान, इवन नेशनलिटी का अभिमान कि मैं अमेरिकन हूं, जैपनीज हूं, चाइनीज हूं। हम कह सकते हैं हम टोटल देहाभिमान युक्त और सांसारिक बन गए हैं। प्रैक्टिकली भी हमारा मैक्सिमम टाइम, मनी, एनर्जी देह के पीछे, दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे, देह संबंधों के पीछे ही खर्च हो रहा है। प्रतिदिन का हिसाब लगा लीजिए, इससे जीवन स्थिति का ख्याल आ जाएगा। प्रतिदिन के 24 घंटे में से कितना घंटा रोज हम सोते हैं, कितना घंटा सोते, कितना घंटा सोते, 7-8 घंटा रोज सोते हैं, रोज नहाते हैं, ड्रेसअप होते हैं, रोज भोजन करते हैं, कितनी बार खाते हैं, हाँ, कहने के लिए दो बार तीन बार, लेकिन वास्तव में अपने आप को देखो, सारा दिन कुछ न कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, चबाते रहते हैं। हम कह सकते हैं कम से कम 12 घंटा 50% टाइम केवल खाने पीने सोने नहाने धोने में ही खर्च होता है, आधी जिंदगी। बाकी रहे 12 घंटे में से नौकरी धंधे के पीछे या घर गृहस्थी के दिन भर के कामकाज में 8-10 घंटे खर्च होते। माना 35% टाइम नौकरी धंधे के पीछे खर्च होते हैं, और वो नौकरी धंधा भी किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? पेट के लिए। क्या कहते हैं, पेट के लिए सब कुछ करना पड़ता है, शरीर निर्वाह, जीवन आजीविका, परिवार पोषण के लिए करना पड़ता है। बाकी रहे 2-4 घंटे पारिवारिक सामाजिक कार्यों में, टीवी रेडियो इंटरनेट मोबाइल के पीछे ही खर्च होते हैं। ये हमारी रोज की दिनचर्या है। हमारा मैक्सिमम टाइम मनी एनर्जी इसी के पीछे खर्च होते हैं। जीवन के ऐसे स्वरूप में हमें शांति से सोचने की आवश्यकता है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, शरीर भान में रहते हैं, देहाभिमान में समय शक्ति धन खर्च कर रहे हैं, पर क्या हम शरीर हैं? सोचिए, क्या मैं शरीर हूं? जबकि हर कोई शरीर के बारे में जानता है कि वास्तव में शरीर क्या है। चित्र में देखिए, वास्तव में शरीर क्या है? शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। प्रकृति के 5 तत्व है, पृथ्वी, आकाश, जल, वायु और अग्नि। शरीर इन्हीं 5 तत्वों से बना है, मैटर से बना है, इसलिए शरीर भी एक मटेरियल है। जब हम डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं 5 तत्वों का बना शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गए। सरल शब्द में हम कहते हैं मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल जाता है। शरीर तो तत्वों से बना, संसार की जितनी भी चीजें वस्तुएं आप देखते हैं, ये सोफा है, कुर्सी है, पंखे हैं, माइक है, पर्दे हैं, लाइट है, घड़ियां हैं, इन आंखों से जो कुछ भी आप देख रहे, जितनी भी चीजें वस्तुएं साधन वैभव पदार्थ आप देख रहे हैं, एक छोटे स्क्रू से लेकर बड़े से बड़ी मशीन किससे बनी है? प्रकृति के पांच तत्वों से बनी है। तो जैसे ये चीजें जड़ है, नॉन लिविंग है, शरीर भी जड़ है, तत्वों से बना है, नॉन लिविंग है। जैसे ये चीजें परिवर्तनशील है, हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती है और आखिर टूट फूट जाती है, तो जैसे ये चीजें परिवर्तनशील और नाशवंत है, शरीर भी परिवर्तनशील है। बचपन से लेकर अब तक आपके अपने देखते देखते आपका अपना शरीर कितना बदल गया, बदला है कि नहीं बदला, कितना बदल गए। शरीर परिवर्तनशील है और आखिरकार नश्वंत है। तो शरीर तो जड़ है, क्या मैं जड़ हूं? हम जब कहते हैं कि हम मनुष्य आत्मा है, जीवात्मा है, ह्यूमन बीइंग है, जब ह्यूमन बीइंग शब्द बोलते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग मिलाकर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है, मानव शरीर प्लस आत्मा मिलाकर मनुष्य आत्मा जीवात्मा कहा जाता है। अब मानव शरीर पांच तत्वों से बना है, जड़ है, वो हम जानते हैं क्योंकि शरीर स्थूल है, इन आंखों से देख सकते हैं। लेकिन शरीर से भिन्न जो चैतन्य शक्ति है, जो अति सूक्ष्म है, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जब कोई आत्मा शरीर छोड़कर जाती है, हम कहते हैं लाइट हैज गॉन, प्राण चले गए, दीवा बुझ गया। क्या चला गया, कैसा चला गया, दिखाई नहीं देता है। जैसे ही जब तक चैतन्य शक्ति है, हम सोचते हैं, कर्म करते हैं, अनुभव होता है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, शरीर डेड हो जाता है। डेड बॉडी कहते हैं, शरीर डेड हो जाता है। हमारे एक दो के साथ जो संबंध है वो समाप्त हो जाता है। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम तुरंत कहते हैं जल्दी करो, जल्दी तैयारी करो, जल्दी सबको सूचना दो, जल्दी उठाओ, जल्दी निकालो। हमारे संबंध समाप्त हो जाते उस चैतन्य शक्ति को। आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, जिसको हम सोल कहते हैं, स्पिरिट कहते हैं, मेडिकल साइंस जिसको कॉन्शियंट एनर्जी कहता है, जिसको साइकोलॉजी में साइकी कहते हैं, लिविंग एंटिटी स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, सरल शब्द आत्मा उसको कहा जाता है। तो देखिए, मनुष्य आत्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक पांच तत्वों का बना, हड्डी मांस चमड़ी का पुतला शरीर, और दूसरी अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा। प्रश्न आप सबसे ये है कि हम कौन है, मैं कौन हूं? क्या मैं पांच तत्व का बना जड़ शरीर हूं, या इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं? कौन हूं, कौन हूं? क्या उत्तर आता है मन? क्या हम जड़ हैं या चैतन्य? विवेक से सोचेंगे तो सही उत्तर आएगा। भल देखने में शरीर आ रहा है, चित्र में बताया है कि देखने में बल्ब आ रहा है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, ट्यूब लाइट दे रही है, हीटर गर्मी दे रहा है। देखने में बल्ब आता है, ट्यूब आती है, हीटर आता है, लेकिन सत्यता क्या है? सत्यता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब द्वारा, प्रकाश के रूप में, ट्यूब द्वारा, लाइट के रूप में, हीटर द्वारा, गर्मी के रूप में अनुभव होता है। देखने में साधन आता है, इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है। ऐसे भल देखने में शरीर आ रहा है, लेकिन मैं शरीर नहीं हूं। क्योंकि शरीर जड़ है और मैं जड़ नहीं हूं। मैं सोचती हूं, विचार करती हूं। ये सोचना विचार करना चैतन्यता की निशानी। जड़ चीजें सोच नहीं सकती। हम सोचते हैं, विचार करते हैं, ये चैतन्यता की निशानी। हमें इच्छाएं होती है, स्मृति रहती है। कोई सुंदर स्थान आप देख कर आते हैं, उस स्थान की सुंदरता बार बार याद आती है, फिर वहां जाने की इच्छा होती है, वो किसको होती है? ये फीलिंग किसको आती है? चैतन्य को आती है। हम कर्म करते हैं, जड़ चीजें अपने आप एक्टिव नहीं हो सकती, हम कर्म करते हैं। हमें अनुभव होता है, हमें अनुभव होता है, अच्छा कार्य करते हैं, खुशी होती है, गलत काम हो जाता है, दिल खाता है, भय लगता है। हमें अनुभव होता है, हमें दूसरों के लिए भी सहानुभूति होती है, हमदर्दी होती है, रहम आता है, प्रेम आता है, हमें दूसरों के लिए सहानुभूति होती है। किसी के दुख दर्द कष्ट पर जरा भी आपको सहानुभूति ना हो, हमदर्दी ना हो, जरा भी दया प्रेम ना हो, तो ऐसे व्यक्ति के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते हैं कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, कठोर दिल है। सहानुभूति, दया, प्रेम चैतन्यता की निशानी। तो विचार, स्मृति, इच्छा, कर्म, अनुभव, सहानुभूति, ये सब चैतन्यता के लक्षण है। इससे सिद्ध है कि मैं चैतन्य शक्ति हूं, मैं आत्मा। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य यही हमें समझना है कि मैं आत्मा हूं, चैतन्य शक्ति। मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, मैं इस शरीर से अलग, शरीर को धारण करने वाली अति सूक्ष्म चैतन्य शक्ति आत्मा। सुनने में ये बात बड़ी साधारण जानी हुई महसूस होती होगी। आप सोचते होंगे कि बहन जी ये हम जानते हैं। जब कोई शरीर छोड़ते हैं, डेथ होती है, हम श्रद्धांजलि देने जाते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं, किन शब्दों से श्रद्धांजलि देते हैं, क्या बोलते हैं? उस आत्मा को शांति मिले, हम कहते हैं उस आत्मा की सदगति हो। अब आप देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली, क्योंकि गई कौन? गई कौन? आत्मा। शरीर तो यहीं पड़ा, शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो। क्या जीते जी शरीर में रहते हम खुद को आत्मा समझते हैं? समझते हैं? हाँ? नहीं। कितने आश्चर्य की बात है कि हम जीवन भर खुद को शरीर ही समझते रहते, शरीर भान में ही जीते हैं। इसलिए भल ये जानी हुई सुनी हुई साधारण बात लग रही हो, परंतु भाइयों और बहनों, ये मूल और मुख्य बात है। स्वयं के बारे में जानने का ये प्रथम सत्य है। इसलिए राजयोग का प्रथम अभ्यास है खुद को आत्मा समझना, आत्मा स्मृति में रहना, आत्मा चिंतन करना। ये राजयोग का प्रथम अभ्यास है। कितनी अज्ञानता है कि इंसान दुनिया भर की चीजों को जानता है, दुनिया भर की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता रहता है, लेकिन कहते हैं ना, दीवे तले अंधेरा, अपने आप को ही नहीं जानता है। खुद को देह समझकर जीते हैं। इसलिए अब ये सत्य बुद्धि में रहे, ये जागृति बुद्धि में रहे कि हमें आत्मा हूं। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, अति सूक्ष्म है, इन आंखों से देख नहीं सकते, अति सूक्ष्म आकार किसको कहेंगे, स्मॉलेस्ट फिगर किसको कहेंगे, बिंदु को, पॉइंट को। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है, न कि ट्रायंगल, स्क्वायर, अष्टकोण, षटकोण, नहीं। आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप है। और शरीर धारण करने के बाद आत्मा मस्तक में स्थित होकर इस शरीर को चलाती है। मस्तक ब्रेन, बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। बॉडी की मेजर सिस्टम्स ब्रेन से कंट्रोल होते। हम कह सकते हैं कि ब्रेन बॉडी की कंट्रोलिंग ऑफिस है। आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है, इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाते हैं। उसी की यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। पर हमें ये अवेयरनेस नहीं है, ज्ञान नहीं है कि हम यहां तिलक क्यों करते, क्यों हर शुभ कार्य में भाइयों को बहनों को सबको क्यों हम अक्षत कुमकुम लगाते हैं। यह अविनाशी आत्मा स्मृति का प्रतीक है। भक्ति में हम तिलक लगाते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं, पर खुद को आत्मा नहीं समझते। यहां हम तिलक नहीं करते हैं, खुद को आत्मा समझते हैं। हरेक को आत्मा दृष्टि से देखते हैं, आत्मचिंतन का अभ्यास करते हैं। इसलिए हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मैं स्त्री हूं गलत, मैं पुरुष हूं गलत। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। मैं तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति हूं, आत्मा। इस एक मूल सत्य को न जानने के कारण आज कितने डिफरेंसेस है कि ये स्त्री है ये पुरुष है, कितने भेदभाव, ये युवा है ये बूढ़े हैं, ये काले हैं ये गोरे हैं। इसलिए अगर हम भाईचारा लाना चाहते हैं, हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि मैं आत्मा हूं। शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है। हम कंपेयर कर सकते हैं कि शरीर एक मोटर के समान है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान। एक ड्राइवर भी जानता है, दिन रात गाड़ी चलाता है, पर वो अपने आप को मोटर नहीं समझता है। उससे क्लैरिटी है कि मोटर अलग है, मैं ड्राइवर अलग है। हर क्षण हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, आंख द्वारा देखते हैं, कान द्वारा सुनते हैं, मुख द्वारा बोलते हैं। हर क्षण कर्मेंद्रियों से कर्म करते हैं, पर हम शरीर नहीं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग आत्मा हैं। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक, मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं। शरीर एक वस्त्र के समान है, मैं आत्मा इससे धारण करने वाली। मेरा शर्ट है, मेरा पैंट है, मेरी साड़ी है। मैं साड़ी नहीं, मैं वस्त्र नहीं, इस प्रकार मैं शरीर नहीं, शरीर एक वस्त्र है, मैं आत्मा इसको धारण करती। प्रसिद्ध योग शास्त्र गीता में भी शरीर को रथ कहा गया है, आत्मा को रथी कहा गया है। शरीर को देह कहते हैं, आत्मा को देही कहा जाता है। इसलिए आप देखिए, जब डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं तो हम कहते हैं फलाने की अर्थी उठी। अर्थी मीन्स, अर्थी माना जिसमें रथी, आत्मा नहीं है, उसे अर्थी कहते हैं। तो राजयोग का पहला अभ्यास है खुद को आत्मा समझना। ये पहली प्रैक्टिस है। अब हम ये समझेंगे कि आत्मा माना क्या है, शरीर माना पांच कर्मेंद्रिया, आंख नाक कान मुख और हाथ पांव। हाथ पांव जिसे स्पर्शेंद्रिय कहते, तो शरीर पांच कर्मेंद्रियों से बना है। आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां। आत्मा किसको कहते? मन बुद्धि संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। अब हम समझेंगे कि मन किसको कहते हैं। मन शब्द से हम सभी परिचित हैं। अक्सर हम कहते हैं मन की शांति चाहिए। बरसों से भक्ति करने वाले अब तक भी ये कंप्लेन करते हैं कि मन एकाग्र नहीं होता है, मन भटकता है। अब आप बताइए कि मन भटकता है मीन्स क्या होता है? मन भटकता है माना क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है, जो निकलकर भटकती है। जब आप कहते हैं कि मन भटकता है, एकाग्र नहीं होता है, मीन्स क्या होता है, क्या होता है? अनेक विचार आते हैं, बैठे हैं परमात्मा को याद करने, अन्य अनेक अनेक विचार आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि मन भटकता है। तो आत्मा की विचार शक्ति, संकल्प शक्ति, मनन शक्ति को मन कहा जाता है। आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। मन का कार्य है सोचना, विचार करना, कल्पना करना, आइडियाज क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। इसलिए सबसे पहली बात समझ लीजिए कि मन को विचार शून्य नहीं कर सकते, क्योंकि मन का कार्य ही सोचना है। इसलिए हम विचारों की, चिंतन की दिशा को बदल सकते हैं, चिंतन खत्म नहीं कर सकते। सोचना ही चैतन्यता की निशानी, सोचना ही तो चैतन्यता की निशानी। ना सोचना माने जड़ बन जाना, डेड हो जाना। अब आप देखिए कि अब तक हमने मन का उपयोग कौन से चिंतन में किया? अधिकतर कौन सी बातें हम सोचते रहते? हर एक अपने मन को ऑब्जर्व करिए, अब तक हमने मन का उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन में ही अधिक किया। इसलिए वही विचार बार बार आते, वही विचार बार बार आते। आप कौन सी बातें सोचते रहते? वही नौकरी, धंधा, घर गृहस्थी, समाज, संसार, शरीर, परिवार, वही सोचते रहते हैं ना? क्योंकि खुद को शरीर समझते हैं, इसलिए वही बातें सोचते रहते हैं। राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि जो आवश्यक है, जरूरी है, वो बातें सोचनी है। शरीर के संबंध में, परिवार के संबंध में, नौकरी के संबंध में, संसार के संबंध में जो बातें जरूरी हैं, वो सोचनी है। पर क्या हम आवश्यक ही सोचते हैं? देखिए, क्या हम जरूरी ही सोचते हैं कि अनावश्यक, बिन जरूरी, बिगर मतलब की, तेरी मेरी दुनिया भर की कितनी बातें सोचते रहते? उसको क्या कहेंगे? वेस्ट थॉट, व्यर्थ विचार। व्यक्ति सोचता बहुत कुछ है, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म में नहीं लाता है तो उसे क्या कहेंगे? वेस्ट, व्यर्थ। तो राजयोग में हम ये सिखाते हैं कि हम व्यर्थ चिंतन खत्म करें, आवश्यक बातें सोचे, व्यर्थ से मुक्त हो जाए। अब हम मन को स्वचिंतन, आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन में मन को लगाए। हमें चिंतन की दिशा को बदलना, मन को मारना नहीं है, सुधारना है। हठ क्रियाओं से मन का दमन नहीं करना है, हमें मन को शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर मन को सुमन, श्रेष्ठ मन बनाना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं, मन का कार्य है सोच। एक मिनट भी मैं आपको शांत बिठाऊं, आपको अनेक विचार आए, पर सभी विचार इसी क्षण कर्म में आप नहीं लाते। आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, फिर हम नाश्ता करेंगे, चाय पियेंगे, इधर जाएंगे, ये देखेंगे, बाद में करेंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं, आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहते हैं। बुद्धि का कार्य है मन के विचारों को समझना, सिलेक्ट करना, चूज करना, डिसीजन लेना, ये बुद्धि का कार्य। इसलिए कहा जाता है कि मन चंचल घोड़े के समान है तो बुद्धि उसकी लगाम है। बुद्धि मन को कंट्रोल करती है। पर आज स्थिति क्या है? आज हमारी बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि बुद्धि शुद्ध नहीं रही है, शक्तिशाली नहीं रही। बुद्धि भ्रष्ट बन गई है। इसलिए हम कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, संसार बन गए हैं। इसलिए अगर बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि योग, बुद्धि का अटेंशन परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है। क्यों राजयोग की आवश्यकता है? केवल फिजिकल योग से नहीं चल सकता है। क्यों राजयोग की आवश्यकता है? क्योंकि आज मन और बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली, दिव्य बनाने की आवश्यकता है। इसलिए योग परमात्मा से लगाना है और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं। हम कर्म करते हैं। हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा में संचित होता है। आप जो भी कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, साधारण करते हैं, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। कर्म के प्रभाव को ही स्वभाव संस्कार कहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं। व्यक्ति दो बार, दस बार, बीस बार, चालीस बार गुस्सा करते रहते हैं, उनका स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। हम दो बार, चार बार, दस बार झूठ बोलते रहते हैं, हमारी आदत झूठ बोलने की हो जाती है। छोटी छोटी चीजों की चोरी करते 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 व्यक्ति पक्का चोर बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं। और हम हरेक जानते हैं ये सत्य, हम हरेक जानते हैं कि आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है तो और कुछ भी साथ नहीं ले जाती। क्या साथ ले जाती है? जीवन भर किए हुए कर्मों का प्रभाव संस्कार के रूप में आत्मा साथ ले जाती। जैसे संस्कार, ऐसी आत्मा की गति होती है। फिर से ऐसी ही जीवन स्थिति प्राप्त होती है। इसलिए कर्म पर कितना अटेंशन देने की जरूरत है। आश्चर्य की बात क्या है, कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते। जब हम कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते, हम घंटों व्यर्थ नेगेटिव सोचते रहते, हम घंटों आपस में जब मिलते हैं तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते हैं, हम जीवन भर अनावश्यक व्यर्थ नकारात्मक कार्यों में उलझे रहते हैं। जब कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते, जब कर्म फल भोगते हैं तब सोचने बैठते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों आती, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मुझे ऐसे लोग क्यों मिलते, मेरे नसीब में ही ऐसा क्यों है। हम भूल जाते हैं कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर जब करते हैं तो अटेंशन नहीं देते। और स्वयं का ज्ञान नहीं है, जीवन में स्व दर्शन स्व चिंतन का अभ्यास नहीं है, इसलिए दूसरों को दोषित करते रहते हैं कि इसके कारण मुझे प्रॉब्लम होता है, इसके कारण मुझे विघ्न आते, यही मुझे दुख देते। हम दूसरों को दोषित करते हैं, पर सत्यता ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है। इसलिए हम हरेक अपने अपने स्वभाव संस्कार को देखें, अपनी आदतों को देखें, अपनी टेंडेंसी को देखें। इससे हमें पता चल जाएगा कि हमने अपने जीवन में क्या किया है, कैसे कर्म किए हैं। दूसरों के लिए तो हम रिमार्क्स देते हैं, दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी ओपिनियन देते हैं कि फलाना बहुत झूठा है, बहुत गुस्सेल है, बहुत प्रपंची है, बहुत अभिमानी है। दूसरों के लिए तो जल्दी रिमार्क्स देते हैं, पर यहाँ हमें खुद को रियलाइज करना है, अपने आप को महसूस करना है कि हमारे स्वभाव संस्कार आदतें कैसे बन गए, आपस में झूठा अभिमान होने के कारण हम स्वीकार नहीं करते, महसूस नहीं करते। कोई हमारी एक भूल बताएगा, हम चार भूल बता देते हैं उसकी। झूठा अभिमान है इसलिए आपस में महसूस नहीं करते, पर जब हम परमात्मा को याद करते हैं, कोई पवित्र स्थान पर जाते हैं, कोई महान आत्माओं से मिलते हैं, तब हम महसूस करते हैं। इसलिए आरती में, भजनों में, प्रार्थना में गाते हैं, स्वीकार करते हैं कि मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता। गाते हैं कि नहीं गाते? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण ना ही, मैं पापी नीच कपटी, मोह सम कुटिल न कोई। तब हम गाते हैं, बेशक आज हम सभी आत्माएं दुखी अशांत पतित क्रोधी अभिमानी बन गए हैं। अगर हम इन संस्कारों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म ही संस्कार बनते, इसलिए हमें अपने बिहेवियर को, व्यवहार को सुधारना चाहिए। और अगर हम अपने कर्मों को सुधारना चाहते हैं, हमें अपने चिंतन को बदलना चाहिए। विचार ही कर्म में आता है, कर्म ही संस्कार बनते, इसलिए चिंतन को बदलता है। एक और सत्य हमें यहां समझना है कि भला आज हम दुखी अशांत पतित क्रोधी अभिमानी लोभी बन गए हैं, लेकिन हम हरेक जीवन में क्या चाहते हैं? हम हरेक जीवन में क्या चाहते हैं? हरेक इंसान जीवन में शांति चाहता है, सुख चाहता है, आनंद चाहता है, प्रेम चाहता है। क्यों? क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत है, सत्य है, पवित्र है, आनंद प्रेम स्वरूप है। ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। हरेक आत्मा ओरिजिनली ये 7 क्वालिटीज अपने आप में धारण रखती है। हम इन 7 गुणों के स्वरूप है। इसलिए आप देखिए, हमें शांति चाहिए न कि अशांति। गुस्सा करके भी व्यक्ति आखिर शांत हो जाता है, क्योंकि उसके ओरिजिनल नेचर शांति है। तब हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ जाता है, मीन्स आता है और जाता है, आ जाता है, आता है और जाता है। आखिर क्या रहता है? आखिर शांति रहती। हम कहते हैं अब मिजाज शांत हुआ। हमारी ओरिजिनल नेचर शांति है। इसलिए जीवन में शांति चाहिए न कि गुस्सा। हम सुख के लिए मेहनत करते हैं न कि दुख के लिए, क्योंकि आत्मा ओरिजिनली सुख स्वरूप है। हम दुख में भी सुख ढूंढते हैं। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, कोई हमारी घृणा करे, नफरत करे, तिरस्कार करे, वो हमें अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। सब खुशी आनंद में रहे वो हमें अच्छा लगता, कोई उदास रहे, निराश रहे, डिप्रेस रहे, हमें अच्छा नहीं लगता है। हम खुशी में लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हरेक आत्मा बेसिकली आनंद स्वरूप है। हमें स्वच्छता, पवित्रता, सच्चरित्रता अच्छा लगता है। हमें गंदगी, विषय वासना, बदचलन अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली सत्य है, पवित्र है, शुद्ध है। ये हमारी ओरिजिनल क्वालिटीज है। हम कह सकते हैं कि सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति मुझ आत्मा में समाया हुआ है। उसे बाहर नहीं ढूंढना है। शांति जंगलों में नहीं। हम आत्मा शांत आत्मा है, इसलिए कहते हैं बाहर भटकना नहीं है, भीतर जाना है। इसका अर्थ क्या है? सोल कॉन्शियस बनना है। और आज आप अभ्यास करके देखिए, जैसे ही आप खुद को आत्मा समझेंगे, मन शांत होने लगेगा। मन शांत होने लगेगा, शांति हमारा स्वधर्म है, सुख साधनों में नहीं है। इन सब साधनों का, सुविधाओं का सुख भी तब महसूस होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो अपार वैभव में महल में भी अच्छा नहीं लगता। मैं आत्मा सुख स्वरूप हूं तो मुझे दाल रोटी में भी आनंद है, आनंद फिल्मों में होटलों में नहीं है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप, मुझे खुशी नहीं है कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी है, महफिल है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूं, मुझे अपने घर में ही मजा आता। तो शांति, सुख, आनंद, प्रेम, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति मुझ आत्मा में ही समाया हुआ है। मैं आत्मा इन गुणों का स्वरूप। हमें सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास स्व में स्थित होना है। और लास्ट बात कि हम सभी आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। हमारे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। अभी जिस दुनिया में हम बैठे हैं, जीवन जी रहे हैं, इन आंखों से जो संसार आप देख रहे हैं, ये कर्म क्षेत्र है, ये फिजिकल वर्ल्ड है। पांच तत्वों से बनी हुई ये दुनिया है। स्क्रीन पर चित्र में देखिए, सबसे नीचे आसमानी रंग से जो बताया है वो ये साकार मनुष्य लोग है, फिजिकल वर्ल्ड है, कॉर्पोरियल वर्ल्ड है, पांच तत्वों की बनी हुई ये दुनिया है। इस दुनिया में आत्मा आकर शरीर धारण कर कर्म करती है, कर्म फल भोगती है, इसलिए ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, ये घर नहीं है, वर्क प्लेस। हम कंपेयर करते हैं, ये वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि रंगमंच है, हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर हैं। हम कहते हैं संसार मुसाफिर खाना है, जीवन यात्रा, आत्मा को मुसाफिर कहते हैं। तो ये घर नहीं है, इसलिए हरेक को जाने अनजाने, ध्यान से सुनना, हरेक को कभी न कभी जाने अनजाने ऊपर जाने की इच्छा होती है। क्यों? क्योंकि हमारा असली घर इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, परम धाम। तब हम कहते हैं जब कोई शरीर छोड़कर आत्मा जाती है, हम कहते हैं अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पर हम जानते नहीं हैं कि कहां से आए हैं, कहां जाना है। हमारा असली घर परम धाम है, पांच तत्वों से पार। प्रकृति का एक और छठवां अति सूक्ष्म अखंड लाल ज्योति तत्व है जिसे ब्रह्म तत्व कहते। हम उस ब्रह्मलोक के निवासी। चित्र में सबसे ऊपर देखिए, गोल्डन रेड कलर से बताया है अखंड लाल ज्योति तत्व, जिसमें हम पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु आत्माएं निवास करते हैं। वो सोल वर्ल्ड है, रूहों की दुनिया है। ये फिजिकल वर्ल्ड है, तत्वों की दुनिया है। वहां हमें शरीर नहीं है, इसलिए कर्म नहीं है, हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो शांति की दुनिया है। वहां हम आत्माएं अपनी साइलेंट मर्ज स्टेज में हैं। यहां जब हम आते हैं, शरीर धारण करते हैं, हमारा रोल इमर्ज होता है। हम कर्म में आते हैं, आवाज में आते हैं। तो अगर इस दुनिया में रहते हुए अगर ये सत्य याद रहे कि हमारा असली घर परम धाम है, ये दुनिया कर्म क्षेत्र है, तो हम इस दुनिया में रहते भी दुनिया से डिटैच अनासक्त न्यारे रह सकते हैं। और इस शरीर में रहते अगर ये सत्य याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो इस देह में रहते भी, कर्म करते भी देहभान नहीं आएगा, हम सोल कॉन्शियस रह सकते हैं। तो ये है हम आत्माओं का असली परिचय। इस आत्मा परिचय में स्थित होने के बाद ही हम परमात्मा से मिलन मना सकते हैं। तो हम पांच मिनट सभी साइलेंस में बैठेंगे, आत्म चिंतन का अभ्यास करेंगे, सभी व्यवस्थित अलर्ट होके बैठ जाएं। कमर सीधी रखकर बैठेंगे, ताकि आप फिजिकली थके नहीं, अपनी डायरी, पर्स, बैग, फाइल साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेकर न बैठे। जितना हो सके एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके न बैठे। आंखें नेचुरल खुली रहने से, राजयोग की ये विशेषता है, योगाभ्यास के समय हम आंखें नेचुरल खुली रखते हैं। आंख बंद करके बैठेंगे तो आप सो जाएंगे, नींद आ जाएगी। हमें चिंतन अनुभव मन बुद्धि से करना है, आंख बंद करने की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे। मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। इस अवेयरनेस के साथ हमें देखना है कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा है। हम शरीर से यहां बैठेंगे पर मन और बुद्धि से असली घर परम धाम में जाएंगे। जो हम आत्माओं का असली घर है, हमें साइलेंस में बैठकर मन ही मन बुद्धि पूर्वक समझ पूर्वक चिंतन करना है, स्व चिंतन आत्म चिंतन। कैसे आत्म चिंतन करना है मैं सजेशंस देती जाऊंगी। ये आपका नया अभ्यास है, इसलिए मैं कमेंट्री के रूप में सजेशंस देती जाऊंगी। जो विचार मैं दूं वो आपको मुख से रिपीट नहीं करना है, लेकिन वो ही थॉट मन ही मन रिवाइज करना है, उसके अर्थ को समझना है, उसे रियलाइज करना है। कुछ क्षणों के लिए अन्य सभी बातों से डिटैच हो जाइए। आस पास की व्यक्तियों से परिस्थितियों से साक्षी बन जाइए। स्वयं के मस्तक बीच अपने चैतन्य आत्म स्वरूप के प्रति केंद्रित हो जाइए। मैं आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप अविनाशी चैतन्य शक्ति मैं आत्मा इस शरीर की मालिक इन कर्मेंद्रियों की राजा मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाते इस शरीर रूपी साधन को स्वच्छ रखना है स्वस्थ रखना है परंतु शरीर के अभिमान में नहीं आना है कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए इस अवेयरनेस में रहना है कि मैं आत्मा आँखों द्वारा देखती मुख द्वारा बोलती हूँ कानों द्वारा सुनती हूँ परंतु मैं आँख नहीं हूँ कान नहीं हूँ मुख नहीं हूँ मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग आत्मा हूँ चैतन्य हूँ मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र ये मेरा घर नहीं है मुझ आत्मा का असली घर शांति धाम है जो इस भौतिक दुनिया से दूर है पांच तत्वों से पार है जहां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म तत्व छाया हुआ है मैं आत्मा ब्रह्मलोक की निवासी अपने ओरिजिनल स्वरूप में मैं आत्मा चैतन्य मैं शुद्ध प्रबुद्ध पवित्र आत्मा मैं शांत और शीतल मेरा स्वधर्म शांति है। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ, मन शांत होने लगता है। मैं आत्मा आनंद प्रेम स्वरूप मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, मैं स्वयं एक शक्ति दिव्य ज्योति हूँ। Thank you.